ਗਾਨ ਮੈਂ ਬੇਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਨ ਜਿਨ ਵਿਚਰੇ ਹਮਾਰੇ ਧਿਆਨ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਭਾਵੋਂ ਸੇ ਪਰਿਚਿਤ ਹੈ, ਯਾ ਤੋ ਹਰਸ ਯਾ ਸ਼ੋਕ। ਕਭੀ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਕਰ ਰੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕਭੀ ਪਾਂਚ ਇੰਦਰੀਓ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਓ ਮੈਂ ਲੌਕਿਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੈਂ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਨ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਭਾਵੋਂ ਸੇ ਹੀ ਪਰਿਚਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸੇ ਹਮ ਵੈਰਾਗ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਭਾਵੋਂ ਕੇ ਅਭਾਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾ ਉਸਮੇ ਹਰਸ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਇਸਮੇ ਸ਼ੋਕ ਹੈ। ਬਾਰਹ ਭਾਵਨਾਓਂ ਉਵੇਂ ਕਾ ਚਿੰਤਮਨ ਜੋ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਵੋਂ ਕੇ ਅਭਾਵ ਰੂਪ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰਹ ਭਾਵਨਾਓਂ ਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਚਿੰਤਤ ਸਮ ਸੁਖ ਜਾਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਲਨੀ ਪਵਨ ਕੇ ਲਾਗੇ, ਕਿ ਬਾਰਹ ਭਾਵਨਾ ਵੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇ ਚਿੰਤਮਨ ਕਰਨੇ ਸੇ ਸਮਤਾ ਰੂਪੀ ਸੁਖ ਜਗੇ। ਹਰਸ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਨਾਚਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੇ ਅਭਾਵ ਰੂਪ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਰਹ ਭਾਵਨਾ। ਤੋ ਬਾਰਹ ਭਾਵਨਾਏ ਹਮਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਆਚਾਰਿਓ ਨੇ, ਪੰਡਿਤੋਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਧਰਮਾਤਮਾਓਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਸਕਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਨੀ ਰਾਜ ਜਬ ਮੁਨੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਬਾਰਹ ਭਾਵਨਾਓਂ ਕਾ ਚਿੰਤਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋ ਕਰਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਨੀ ਸਕਲ ਬਿਰਤੀ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਭੋਗਨ ਤੈ ਵੈਰਾਗੀ, ਪਰ ਵੈਰਾਗ ਉਪਾਵਨ ਮਾਹੀ ਚਿੰਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰੇਖਾ, ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ਮੈਂ ਵੇ ਅਨੁਪ੍ਰੇਖਾਓਂ ਕਾ ਚਿੰਤਮਨ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਜਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਮੁਨੀ ਰਾਜ ਕੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਏਗਾ, ਤੀਰਥੰਕਰੋਂ ਕੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਏਗਾ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਬਾਰਹ ਭਾਵਨਾ ਕਾ ਵਰਣਨ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਗੇ ਪ੍ਰਥਮਾਨੀ ਯੋਗ ਮੈਂ ਸਭ ਮੈਂ ਬਾਰਹ ਭਾਵਨਾ, ਚਰਣਾਨੀ ਯੋਗ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਗੇ ਤੋ ਉਸਮੇ ਦਸ ਧਰਮ ਬਾਰਹ ਭਾਵਨਾ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਮੇ ਬਾਰਹ ਭਾਵਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਬਾਰਹ ਭਾਵਨਾਏ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਮੈਂ ਵੋ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਗੰਬਰ ਸਮਾਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾਏ ਬਹਿਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਬਾਰਹ ਭਾਵਨਾਓਂ ਕਾ ਪਾਠ ਕਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਵਾਧਿਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਾਰਹ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੋ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਛਤਰਪਤੀ ਔਰ ਰਾਤਨ ਕੇ ਅਸਵਾਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਗੰਬਰ ਜੈਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਿਸਕੋ ਇਹ ਬਾਰਹ ਭਾਵਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਔਰ ਵੋ ਇਸੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਹੋਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੀ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉਸਮੇ ਜੋ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਕਾ ਸਹੀ ਭਾਵ ਹਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਸ ਕੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਹਮ ਰੋਨੇ ਲਗਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕਾ ਸਵਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਛਤਰਪਤੀ ਔਰ ਹਾਤਨ ਕੇ ਅਸਵਾਰ, ਔਰ ਮਰਨਾ ਸਭ ਕੋ ਏਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ। ਜਬ ਹਾਥੀ ਚਲਤੇ ਹੋਗੇ, ਅਭੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਹਾਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹੇ ਤੋ ਹਮ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਾਰੋਂ ਕੇ ਅਸਵਾਰ, ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਛਤਰਪਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ, ਕਾਰੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ, ਉਸ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ। ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਮੇ ਜੋ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸਭ ਕੋ ਏਕ ਦਿਨ, ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਤੇ ਹੀ ਹਮਾਰਾ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਆਕੁਲਤਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਰਾਮ ਮੁਝੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਔਰ ਵੋ ਸ਼ੋਕ ਕੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਨੇ ਲਗਤੀ ਹੈ। ਵੋ ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਲਹਿਰ ਤੋ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਮੌਤ ਯਾਦ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ੋਕ ਕੀ ਲਹਿਰ ਆਨੇ ਲਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸਭ ਕੋ ਏਕ ਦਿਨ। ਤੋ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰ, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि उसके पहले ही उसका चित्त इतना व्याकुल हो जाता है कि उसे अपनी मौत नजर आती है। जिसे मौत नजर आती है उसे फिर क्या दिखता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस पंक्ति का अर्थ जो आप समझे हैं वो ही है? यदि वो है तो ये बात सच्ची है कि मरना सबको एक दिन, क्या हम सब एक दिन मरेंगे? ये बात तो बिल्कुल सच्ची नहीं है। तो लिखा तो है और हम रोजाना बोलते हैं कि मरना सबको एक दिन, और उसके बारे में हमने कितने रोए गाए हैं, लेकिन इसका अर्थ वास्तव में एक दिन नहीं है। एक दिन तो वे निगोदिया जीव एक साथ मरते हैं जो एक जीव शरीर में होते हैं, हम थोड़ी एक दिन मरने वाले हैं। तो क्या अर्थ है इसका कि एक दिन माने एक ना एक दिन? लिखा तो है एक दिन पर अर्थ क्या है? एक ना एक दिन, और एक ना एक दिन का अर्थ होता है कभी ना कभी। तो इन दोनों बातों में कितना फर्क पड़ गया, एक दिन मरने की बात और कभी ना कभी मरने की बात में कितना अंतर है। कि कभी ना कभी कब, तो अगली पंक्ति कहती है कि अपनी अपनी बार, कि जब जिसका नंबर आएगा तब। इसका मतलब नंबर नक्की है, डेट फिक्स है, क्षण फिक्स है। ये क्रमबद्ध पर्याय जो गुरुदेव जी ने हमें बताई थी वो इस पंक्ति में से निकल रही कि नहीं निकल रही देखो। लेकिन हमने निकाली आज तक, सवाल वो निकल रही उसका नहीं है, लेकिन हमने नहीं निकाल पाई तो उसका आनंद हमने नहीं उठा पाया। कि अपनी अपनी बार, तो बात तो मरने की है ना, कि जब नंबर आएगा तब मरना होगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि ये मरने की बात है कि जीवन की गारंटी है? ये गारंटी पत्र है। जब आप कोई सामान खरीदते हो ना और वो कहते हैं कि इसकी इतने दिन की हमारी गारंटी है, यदि इसके पहले खराब हो जाए तो नई चीज ले जाना, पुरानी फेंक जाना। क्यों? तो ये गारंटी पत्र है कि उसके खराब होने की बात है? कि साहब इतने दिन बाद तो खराब होगी, क्या बात होगी? क्यों, उसके लिए कोई रोता है? तो अपना नंबर आएगा तब हम मरेंगे, उसके पहले नहीं मरेंगे, ये गारंटी पत्र है। तो उस दिन मरने के लिए क्या रोना? आनंद की बात है कि हम अपने, जब समय नहीं आएगा उसके पहले किसी कीमत पर मरेंगे नहीं। यदि ये गारंटी हमें समझ में आती तो हमारे को खेद नहीं होता, शोक नहीं होता, घबराहट नहीं होती, एक अलग प्रकार का आनंद आता। और लिखा है उसमें देखो साफ साफ, कोई समय सार की गाथा नहीं है कि किसी पंडित की जरूरत पड़े, बस थोड़ा सा उपयोग लगाने की जरूरत है। लेकिन उपयोग तो सारा धंधे पानी में लग रहा है। क्यों लिखा, कितना साफ लिखा कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। फिर इसके मन में एक बेईमानी आई कि भैया जब नंबर आएगा तब मरना पड़ेगा, पहले तो नहीं, कि हाँ पहले की तो गारंटी है। कोई उपाय ऐसा नहीं है कि तब भी ना मरना पड़े? क्यों, कोई उपाय ऐसा हो कि जब हमारा नंबर आए तब भी हमको ना मरना पड़े, वो बात बताओ। तो उसके लिए उनने दूसरी भावना लिखी कि भैया कोई उपाय नहीं है। दलबल देवी देवता और मात पिता परिवार और मरती बिरिया जीव को कोऊ न राखन। उसका उसका जवाब है जे बचा नहीं पाएगा, बचा नहीं पाएगा, बचा नहीं पाएगा। अरे कब नहीं बचा पाएगा? जब उस टाइम आएगा तब। मरती बिरिया, मरने के समय, ख्याल में आया ना? तो ये जो वस्तु का स्वरूप है, ये देह से देहांतर में जाना संसार का, ख्याल में आया ना? कि एक कुर्ता मेरा फट फट के बिल्कुल जार जार हो जाए, 50 जगह से फट जाए, ठेकरे लग जाए और क्यों साहब फिर भी नहीं बचा सकते। अरे इसको बचाने की क्या बात करता है, ये तो अच्छा है जितने जल्दी छूटे। क्यों ये नहीं बचा सकता है मरते समय भी, तो ये भी तेरे ही हित में है, ये भी आनंद की बात है, इसमें भी रोने की बात नहीं है, शोक की बात नहीं है। क्यों जी भाई साहब, यदि ये देह छूटे ही नहीं अनंत काल तक तो मजा आ जाएगा नहीं? क्यों विजय भाई, क्या ना अजय भाई, विजय भाई जो भी हो, अरे आज मजा क्या आ जाए कि तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा? बोलो ऐसा मजा चाहिए? क्योंकि देह छूटे बिना मोक्ष मिलेगा तो ये समय पे छूटेगी, ये बढ़िया बात है कि खोटी बात है? तो ये इसमें से वो आनंद निकलना चाहिए, वैराग वाला आनंद, राग द्वेष नहीं निकलना चाहिए, शोक नहीं निकलना चाहिए और लौकिक हर्ष नहीं निकले, तो वैराग भावना है, बारह भावना है। तो वो ये कहता कि देखो पंडित जी, हम तो आप लोगों पंडितों से बहुत परेशान हैं, हमें 24 घंटा मौत की याद दिलाते हो, मौत की याद दिलाते हो, मौत की याद दिलाते हो। अरे जब मरेंगे मर जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो मजे से जिंदा रहने दो, तब तक तो खूब आनंद भोगने दो। ये मौत को दिलाकर, याद दिला दिलाकर तुमने जीवन का मजा भी फीका कर दिया है। ना रोटी खाने दो ढंग से, ना घूमने फिरने दो, मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे। हम तैयार हैं मरने को, कब? जब नंबर आएगा तब। ये तुमने कही दी, अब हमें आराम से रहने दो। तो तीसरी भावना आई कि बेटा इस संसार में सुख है कहां, जो तुम कह रहे हो आराम से रहने दो, आराम है कहां? कहूं ना सुख संसार में, और सब जगह देखो कि नहीं, हम तो कोशिश करके देखेंगे निकालेंगे, पैसे में होगा और हमारे पास वो पैसा नहीं है, इसलिए हमारे हमें दुख है, पैसा हम इकट्ठा कर लेने दो, फिर हम देखेंगे कैसे नहीं है सुख। कि भैया तुम कर पाओ कि नहीं कर पाओ, और तुम इन पैसे वालों को देख के नहीं कर सकते हो निर्णय? क्यों अगल बगल में बहुत पैसे वाले हैं कि नहीं, उन्हें देख के नक्की कर लो ना। तो नहीं, हम ही देखेंगे। क्यों हम सारे जग को छानेंगे? क्यों पैसे हो जाएंगे तो पत्नी नहीं है, पत्नी हो जाएगी तो क्यों कुछ ना कुछ झंझट लगा ही रहेगा। वो कहते कि नहीं नहीं, ये संसार तो दुख का ही नाम है, तो इस भ्रम में रहो, चाहे देह छूटने के बाद उस भ्रम में चले जाना, इससे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। जब तक तेरा मिथ्या तो राग द्वेष विद्यमान है, दुख ही दुख है, सुख नाम की चीज है ही नहीं। कि माथा खराब मत करो, देखो मेरे को बहुत जल्दी बारह भावना करनी है, मिनट मेरे पास मिनट है, हर पंच कल्याण में तो मेरे को अब आधा समय कट गया मेरा, तो मुझे और जल्दी करनी पड़ेगी ना। हाँ तो क्या बात चल रही थी अशोक जी, कि संसार में सुख है ही नहीं कि नहीं है, कि जो होगा सो होगा, मिल बांट के भोग लेंगे, पांच पंच मिल कीजे काजा, और बिगड़े सुधरे आए ना लजा। हम तो ये जानते हैं, सब लोग मिल बांट के भोग लेंगे ना, क्यों साहब 25-50 हजार का घाटा हो जाएगा। अरे अपन पांच जने हैं, मां बांट लेंगे, झगड़ा खत्म, काय को रोना। धोखे में मत रहना बेटा, ये मिलकर बांटकर भोगने की व्यवस्था संसार में है ही नहीं, अकेला ही भोगना पड़ेगा, धोखे में मत रहना। ये एकत्व भावना आ गई, कौन सी? कि आप अकेला अवतरे और मरे अकेला होए, और यूं कहूं या जीव को साथी सगा। मिलमाट का काम नहीं है, तेरा सुख दुख जो लौकिक सुख दुख तुझको ही भोगना होगा, और मोक्ष में भी अकेला ही जाएगा। कि नहीं नहीं साहब, अपन तो सब लोग मोक्ष एक साथ है, पूज्य गुरुदेव श्री लोग ऐसे कहते थे मेरे सामने भी, हम तो आप सबके साथ ही मोक्ष चलेंगे। मैंने कहा हमको स्वीकार नहीं है, क्यों? अब गुरुदेव तो ऊपर स्वर्ग में चले जाएंगे, बहुत बड़े पुण्य भाव उनके हो रहे थे, और वहां पर सागरों को फंस जाएंगे, इतनी देर हमें नहीं है बर्दाश्त, हम काय को फंसे, हम तो फटाफट इस बुरक को मोक्ष में भी साथ चाहिए। तो मैंने अब एक पंक्ति लिखी थी, ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यही खड़े रह जाओगे। ये तो अकेले जाने का काम है, ये भीड़ को लेके जाना चाहता है क्यों, नेताओं जैसा कि 100-200 आदमी आगे पीछे नहीं हो तो नेता किस बात के, क्यों नेमनाथ भी भीड़ ले गए थे 1000 की वहां, चलो हमारे साथ तुम्हें ले चलते हैं, क्यों ये भाई ये किसी के साथ का मार्ग नहीं है। अब इतनी बढ़िया एकत्व भावना, सबसे बढ़िया है, पूरा समय सार इस एकत्व भावना पे समर्पित है, और उसमें भी हमने रोना शुरू कर दिया, अकेले ही जन्मेंगे अकेले ही मरेंगे, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कब हूं अजीब को, क्या हो गया तेरे को, तू क्या चाहता है कि जन्म मरण में भी किसी का साथ चाहता है कि हाँ साहब मिल जाए तो बहुत अच्छा। तीर्थंकर तो अपनी मां के अकेले ही होते हैं, और भाग्य से मनुष्य गति में अधिकांश लोग अकेले ही पैदा होते हैं और मरते भी अकेले ही हैं, क्यों तुझे साथ चाहिए, यानी तुझे जन्म में भी साथ चाहिए और मरण में भी साथ चाहिए। और शिकायत किनसे है कि स्त्री बाल बच्चे माँ बाप रिश्तेदार कोई साथ नहीं देता। इस भले आदमी से पूछो कि तेरे मरण में तेरे बाल बच्चे तेरा साथ दे में तू ये चाहता है, जिस दिन बाल बच्चों को पता चलेगा लेने के देने पड़ जाएंगे, रोटियां नहीं खिलाएंगे, कि पिताजी चाहते हम भी इनके साथ मर जाएं। मरण में साथ का अर्थ क्या है, क्यों ये तेरी भावना कितनी खोटी है कि मेरा साथ नहीं देते हो मरण में साथ देवे, क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरा सारा कुनवा मेरे साथ मर जाए। अरे लोग तो अपना वंश चलाने के लिए बच्चा नहीं होता है तो गोद लेते हैं, और तू कहता है मेरे साथ साफ हो जाए, नाती पोते सब नहीं चलेगा कि साहब जन्म में, कि तेरा बच्चा तेरा जन्म में साथ देता तो बच्चा कैसे होता, जुड़वा भाई होता। होता क्या नहीं होता, तेरी पत्नी तेरे को जन्म में साथ देती तो पत्नी कैसे होती, बहन होती। ये जन्म में मरण में साथ की कल्पना ही संसार है, साथ की भावना ही संसार है, और एकत्व की भावना ही मोक्ष का मार्ग है। कोई किसी का साथ नहीं देता ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। असली बात तो इससे भी आगे है, अच्छी तो है जी, असली नहीं है। तो असली बात क्या है बिमल जी, असली बात अन्यत्व भावना पे जा रहा हूं मैं, कि कोई किसी का साथ नहीं देता कि दे नहीं सकता। दो मिनट बात करो नक्की क्या है, बात तो ये है कि दे नहीं सकता, और हम कहते देता नहीं है, देता नहीं है ये सोचते हैं तो देश खड़ा होता है, और दे नहीं सकता ये सोचे तो वितरागता खड़ी होगी। मेरे पेट में भयंकर दर्द है, डॉक्टरों को बुलाया, उनने दवाइयां दी, ये करी वो करी, और उन्होंने कहा भैया दर्द नहीं जा रहा है, तो ये बहुत भयंकर अपेंडिक्स है, गड़बड़ हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अभी तो इनको मारफिया का इंजेक्शन दे दो सो जाए क्या, और सुबह अस्पताल में लाना ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगाया एक इंजेक्शन लेकिन दर्द नहीं हुआ थी, फिर भी चिल्लाता रहा, तो क्या हुआ कि एक और लगा दिया कि अब भी नहीं गया, एक और लगा दो कि मर जाएगा, अब नहीं लगा सकते, अब तो भोगना ही पड़ेगा, और सोए अस्पताल में ऑपरेशन होगा। तो अब मैं पूछता हूं कि पत्नी बाल बच्चे कोई अपना दुख में साथ दे नहीं रहे कि दे नहीं सकते, उनने कोशिश तो पूरी कर ली, अब तो भोगने में ही फायदा है कि नहीं है, अब हम कहें कि पत्नी भी वो दुख बांट तो सकती नहीं है, वो चाहे तो रो रो कर नया दुख पैदा कर सकती है खुद के लिए। बाल बच्चे कर सकते कि नहीं कर सकते, साथ में रोने बैठ जाए। समझदार आदमी का काम क्या है कि बेटा पत्नी से जाओ तुम सो, अब मेरा दुख तो मुझे भोगना पड़ेगा, तुमने जितना इंतजाम करना था कर लिया, अब कुछ नहीं है, तुम सो। कि आप रो रहे तड़फ रहे हो और हम सोए कैसे, कि तुम नहीं सोओगे तो सोए मुझे अस्पताल कौन ले जाएगा, मेरी सुबह सेवा कौन करेगा। समझ जाती तो इसमें है कि नहीं, कि तुम सो और सुबह से लैंप पे लगना, कि इसमें समझदारी है कि मैं तो यहां रो रहा हूं और तुम फुसर फुसर सो रहे हो, कोई नहीं सोएगा, इसमें समझदारी है कि उसमें, बोलो। क्योंकि दुख बांट तो सकता नहीं, मेरा दुख तो मुझे भोगना पड़ेगा, तो ये सोचना कि कोई साथ नहीं देता ये सही नहीं है। सही ये है कि कोई किसी का साथ दे नहीं सकता, क्योंकि हमें गुरुदेव श्री ने बताया कि दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, अत्यंत भाव की दीवार पड़ी है, कोई किसी का साथ देने का सवाल ही नहीं है। और तू जिस देह की बात करता है, क्यों ये जिस देह को छूटने का तेरे को डर लगता है, पहले तूने इस देह को अच्छी तरह से देखा है ये कैसी है? क्यों इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। सोच ले एक पल को, अभी अभी सुंदर हलवा बनाया है मूंग की दाल का, अठपहरा घी का, क्यों और हाथ चक्की का आटा और कुएं का पानी, इतना शुद्ध कि उसका कहना ही नहीं, भगवान आत्मा से भी ज्यादा शुद्ध है। इस शुद्ध हलवा वाले को भगवान आत्मा शुद्ध नहीं दिखता है, उन्हें हलवा ही शुद्ध दिखता है। तो वो शुद्ध हलवा अपने मुंह में रखा, क्यों भाई साहब एक क्षण को, और उसी वक्त मुंह में से निकाल दिया, कोई छुएगा? उस परम पवित्र हलवा की यह दुर्दशा कैसे हुई कि मेरा मुंह तो झूठा ही नहीं है, परम पवित्र है, कोलगेट के सुरक्षा चक्र से मैंने इसे परम पवित्र किया था 100-100 बार, कुछ भी कर लेकिन यह झूठापन मिटता ही नहीं है। क्यों जी वो हलवा थोड़ा पेट में चला जाए और वोमिटिंग हो जाए, कोई देखना पसंद करेगा? और 4-6 घंटे तुम्हारी संगति में रह जाए और फिर किसी रास्ते से निकले तो उस परम पवित्र हलवा की यह दुर्दशा किसकी संगति में हुई है कि जिसकी संगति तुम चाहते हो कि मर ना जाऊं मर ना जाऊं मर ना जाऊं, देह का वियोग ना हो जाए, वो कैसा है पहला उसे विचार तो कर लो। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। एक चीज ऐसी है कि इसकी संगति में अनादि से रही लेकिन वो गंदी नहीं हुई, सब चीजें तो गंदी हो जाती हैं। कौन किंतु रहे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह गे है सिद्धेय है बस देह भी वह आत्मा। तू उसकी बात क्यों नहीं करता है, इस देह की बात क्यों करता है? इस तरह इन 6 भावनाएं अनित्य असरण संसार एकत्व अन्यत्व असुचि, इनने क्या बताया कि ये संसार अनित्य है, संसार माने संयोग, ये असरण है, असरण है माने इसको रोकना संभव नहीं है, ये परिवर्तित होगा होगा और होगा, इसका नाम असरण है। ये संसार असार है, ख्याल में आए ना, और एक एक चीज जुदी जुदी है, कोई किसी का कोई साथ नहीं है, और जिस संयोग की तू बात करता है वो संयोग जिसके लिए तू छाती से लगाए रखना चाहता है, जिसके मरने वियोग का नाम मरण है और जिस मरण से तू घबरा रहा है वो कैसा है जरा उसको देख ले। नव द्वार बहे घिनकारी और अस देह करे किम यारी। ये यारी क्या है? यारी किसे कहते हैं भाई साहब? यारी नहीं जानते? यारी माने असद भावना। क्या क्या सुना? ये नहीं सुना होगा उत्तम चंद जी। यारी माने असद भावना, इससे राग करना, इससे अपनापन स्थापित करना, ये मिथ्यात रूप आश्रम, इससे राग करना, ख्याल में आया ना? ये मिथ्यात अवरति प्रमाद कसाय रूप आश्रम, कि ये जो यारी है ये इस देह से भी ज्यादा खतरनाक है। ये देह खतरनाक नहीं है, क्यों? क्योंकि यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और खून भी असुचि है तो वह पुद्गल परछाई। तेरी सुचिता ज्ञान है और असुचिता राग, और राग आग को त्याग कर निष्को निज को निज में भाग। यदि हड्डी अपवित्र है तो रहने दे, तेरे बाप का क्या जाता है? यदि खून गंदा है तो रहने देना, क्योंकि गंदे खून की उपस्थिति में, ये अपवित्र हड्डी की उपस्थिति में इस भगवान आत्मा को केवल ज्ञान हो जाता है और अनंत सुख हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? इस देह की उपस्थिति में अनंत सुख हो जाता है। होता कि नहीं होता? केवली भगवान को तेरे में गुणस्थान में देह है और अनंत सुख भी है। इस देह ने तेरे बाप का क्या बिगाड़ा? ये तो वैसी जुदी है, इसको काय को रो रहा है? गंदी है तो गंदी है, अच्छी है तो अच्छी है, इसमें क्या रोना धोना? लेकिन तेरी अपवित्रता तो वो राग भाव है, वो मिथ्यात्व तो है, कि जिसके होने पर गारंटी से केवल ज्ञान नहीं होगा। अरे मिथ्यात्व के होने पर तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, बोल। तो मिथ्यात्व अपवित्र है कि देह अपवित्र है? कि जिसके होने पर सम्यक दर्शन नहीं हो और उसके होने पर केवल ज्ञान भी हो जाए, और हम देह देह के लिए रो रहे, देह देह के लिए रो रहे। कि पंडित जी इसीलिए तो हमने कहा था कि देह का वियोग न हो जाए, ये बुरी नहीं है। अरे इसके लिए नहीं कह रहे हैं। देह को अपना मानना और इसका वियोग नहीं हो जाए, ये देह वाला पाप नहीं है। इस पाप का नाम है आसद। समझ क्या आया? समझेगा नहीं? इसका नाम क्या है मिठलाल जी? मिथ्यात्व। देह में अपनापन, इसका नाम है मिथ्यात्व, और देह से राग, इसका नाम है राग। ख्याल में आई ना? तो ये है तेरी अपवित्रता। तो हम तेरे को देह छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। देह तो भगवान ने भी नहीं छोड़ी, वे गए ना दीक्षा लेके जंगल में, तो देह को साथ में ले गए, छोड़ तो गए राग। राग को छोड़ने की बात क्यों नहीं करता है? देह को छोड़ने की बात क्यों करता है? वे नैमिनार गए ना, तो वे क्या छोड़ के गए? देह के राग। मिथ्यात्व तो उनके था ही नहीं, और अनंतानबंदी राग नहीं था। प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान बना राग थे, तब तो मुकुट बांध के आए थे, घोड़े पर बैठ के आए थे, कोई ने जबरदस्ती नहीं बैठाया था, अपने शौक से बैठ के आए थे। मैं तो शाम को करूंगा खटिया खड़ी में, मेरे समय मिलेगा, अभी तो मैं क्या करूंगा उसकी। लेकिन वो जो खतरनाक चीज है वो क्या है? वो क्या छोड़ के गए हैं? मैं आपसे पूछता हूं नैमिनाथ, वो उनके अंदर में जो पत्नी के प्रति, इसके प्रति जो राग था, वो उस राग को छोड़ के वन में गए हैं, उसका नाम वैराग है। वो देह को छोड़ के नहीं गए, स्त्री पुत्र मकान जायदाद को छोड़ के नहीं गए, अभी लगाते हैं छोड़ के गए। प्यारी राजू अपनी पत्नी राजुल को छोड़ के जंगल में चले गए, आ कैसा हुआ होगा, कैसा हुआ, कैसा हुआ होगा, क्या हो गया? अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए? नहीं ना, सच्ची बात है। हमने तो सुनी है कि वे बाल ब्रह्मचारी थे, और पांच तीर्थंकर हैं वो बाल यति हैं। तो बालियतियों की भी पत्नियां होती हैं। अरे वो होने वाली थी तो होने वाली को छोड़ी है। अरे बारे वाह, अरे जो हो गई थी जो उनको छोड़ के गए, उनको तो रोते नहीं हो। वो होने वाली थी पत्नी, वो होने के पहले ही छोड़ गए क्यों? मैं भी पिया, मैं भी पिया, काहे के मैं भी पिया, सात फेरे जब तक नहीं पड़ जाए तब तक कोई किसी का पिया होता है। लेकिन एक बस मैं तो एक बात में रात में बात करूंगा, अभी तो एक बात कहता हूं। ये क्यों नहीं कहते हो कि अपने माँ बाप को छोड़ के वे दीक्षा लेके चले गए थे? क्योंकि उनके माँ बाप तो थे ना घर में, उनसे तो सात फेरे बाकी नहीं थे, वे तो पक्के थे कि नहीं थे, उन्हें छोड़ के तो गए हैं ना, तो उनको याद क्यों नहीं करते भले आदमी? पत्नी को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के क्यों? कि माँ बाप को छोड़ना हमें बड़ी बात नहीं लगता है, वो तो पत्नी के हाथ ही मुफ्त में ही छोड़ देते हैं, बिना वैराग्य के ही छोड़ देते हैं। क्या? लेकिन हमें पत्नी को छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, तो हम नेमिनाथ की भी पत्नी वाला रोना रोते हैं, माँ बाप वाला रोना क्यों नहीं रोते हैं? मेरे हिसाब से तो रोना ही नहीं। क्या है? मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे कहने का अर्थ है कि ये आश्रय भाव खतरनाक है, इनके अभाव पूर्वक जो निर्मल दशा प्रकट हुई वो संबर भावना है। तो इस तरह से हमें देखें छह भावनाएं, छह भावनाएं तो संयोग की हैं, जिसमें शरीर प्रमुख है और बाकी स्त्री पुत्र आदि आ गए। तो सातवीं भावना विकारी भाव से शुरू हुई और आठवीं संबर भावना निर्मल पर्याय पे आ गई। क्यों? निज आत्मा की रुचि संबर साधना है निर्जरा, और निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। कि ये संबर और निर्जरा ये भावना उनके प्रकट हुई, ये भाव उनके प्रकट हुए। भावना क्या? भाव। संबर और निर्जरा भाव हैं, ये मुक्ति के मार्ग के भाव हैं, ये निर्मल पर्याय हैं, ये दीतराग पर्याय हैं। लेकिन ये प्रकट हुई हैं, लेकिन इनके आश्रय से ये प्रकट नहीं हुई हैं, वे अपने भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई हैं। तो ऐसे संबर निर्जरा भावना में मोक्ष भी ले लेना, क्योंकि मोक्ष नाम की कोई अलग भावना नहीं है। फिर तीन रह गई, लोक बोधि दुर्लभ और धर्म। क्यों? लोक भावना में दो बिंदु बहुत मार्मिक हैं। हम एक बिंदु को तो हम स्पर्श करते हैं, क्या? चौदह राजभूतंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है, चौदह राजू। और कार्तिक ज्ञान अपेक्षा में चौदह राजू का वर्णन करना शुरू कर दिया, इतना है लंबा, इतना है लंबा, इतना, इतने लंबे चौड़े लोक से क्या लेना देना है? असली लोक भावना तो ये है, कौन सी? कि तामे भरमत है बिन ज्ञान। क्या? कि सर्वद्रव्यमयी जो लोक है इसमें ये आत्मा की क्या पोजीशन है, ये अपने समझ में आया ना, कि मेरा लोक तो मेरे ही आत्मा है, इसके अलावा मेरा कोई लोक ही नहीं है। ये जो चिंतमन है ये लोक भावना में होता है। और दो भावना है, धर्म भावना और बोधि दुर्लभ। इनमें मैं एक नया एंगल आपको देना चाहता हूं, ये वास्तव में एक ही है, दो नहीं है। बोधि माने धर्म, बोधि माने ज्ञान नहीं, बोधि माने रत्नत्रय, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चात, तीनों का नाम है बोधि। ई की मात्रा लग जाए तो तीन हो जाते हैं, और ई की मात्रा नहीं लगे तो अकेला एक ज्ञान रहता है। बोध, बोध माने ज्ञान, और बोधि, बोधि माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चात अंतर। तो ये बोधि दुर्लभ है, बोध दुर्लभ नहीं है, माने रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है। और धर्म भावना क्या है? कि रत्नत्रय। तो चाहे धर्म और धर्म दुर्लभ, ऐसी भावना भाई, बोधि और बोधि दुर्लभ, समझ गए ना? तो एक धर्म और धर्म की दुर्लभता, तो आत्मा तो दुर्लभ है ही नहीं, वो तो अनादि का ही है, अनंत काल तक है, किसके पास नहीं है बोलो। तो कहते क्या कि वो आत्मा की प्राप्ति वो दुर्लभ है, कि प्राप्ति के हमारे पास है, फिर तुम प्राप्ति क्या रही, कि उसे जानना, उसे ही अपना मानना, उसका ध्यान करना, यही दर्शन ज्ञान चरित्र, इसका नाम है प्राप्ति। त्रिकाली ध्रुव की उपलब्धि नहीं, त्रिकाली ध्रुव की उपलब्धि का नाम ही दर्शन ज्ञान चरित्र है, उसे हमने अपना जाना माना। तो धर्म भावना और धर्म दुर्लभ भावना, ये दो भावनाएं हुई। तो इसमें धर्म दुर्लभ भावना माने बोधि दुर्लभ भावना में दो एंगल हैं बहुत मार्मिक। पहला एंगल तो ये जो अपन बहुत जानते हैं कि बोधि बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, निगोद से निकलना दुर्लभ है, तुष्पर्याय पाना दुर्लभ है, मनुष्य गति में आना दुर्लभ है, उत्तम धर्म प्राप्त करना दुर्लभ है, ये दुर्लभ है, वो दुर्लभ है, एक तो ये। और दूसरा एंगल ये है शास्त्रों में कि कहां दुर्लभ है, ये तो तेरे पास उपलब्ध है ना सदा हाजिर हजूर परमात्मा। दुर्लभ तो वो चीज होती है जो पराधीन होती है। एक शब्द में मैं कहता हूं, एक कप चाय का प्राप्त होना जितना दुर्लभ है ना, भगवान आत्मा की प्राप्ति उतनी दुर्लभ नहीं है। इसमें लिखा है चेहरा लाल उसमें जयतन छावड़ा ने कि बोध ही आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं, वो तो अपना भाव है। इतना सा अंतर है निरंजन भाई कि कोई आदमी हमारे पास आया कि साहब मेरे को 100 रुपए की बहुत जरूरत है, यदि दवाई लाके खानी है, 2 घंटे में दवाई नहीं खाई तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो 100 रुपया मुझे चाहिए। अब मेरी जेब में 1000 रुपए हैं और मैं 100 रुपया किसी को दे दूं ना तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरी कभी एक कप चाय में कमी नहीं पड़ने वाली है, घर में लाखों रुपया है। तो अभी अपनी जेब में से निकाल के 100 रुपया देना ये कठिन है। कभी अरे चिंता मत कर, मैं अभी तेरे को करता हूं इंतजाम। निरंजन भाई आपके पास 100 रुपया हो, ये बहुत गरीब आदमी है, मेरे पास तो नहीं है पंडित जी, अशोक भाई आपके पास है। बोलो ये दूसरों से दिलाना कठिन है कि अपनी जेब में से निकाल के देना कठिन है, बोलो आप बताओ मुझे, सरल कौन है और कठिन कौन है। लेकिन इन लोभियों को अपनी जेब में से निकाल के देना कठिन लगता है और दूसरे की जेब में से निकालना सरल लगता है। क्या ये लोभी लोग क्या करते हैं, तुम शाम को आ जाना प्रवचन में, मैं करा दूंगा व्यवस्था, चिंता मत करना, चिंता मत करना, आ जाना। और फिर कहा भैया ये है ये है ये है, सबने लिखा मेरे 11 11 लिखो लिखो बराबर, तो 120 हो गए, 120 हो गए, तो निकाल के 100 उसको देता उसके नाम पर 120 इकट्ठे करता है और 100 उसे देता है, 100 की जरूरत थी ना। इन लोगों को वो सरल दिखता है और खुद जेब से निकाल के देना कठिन लगता है। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मुझे याद आ गई है, मैं इस वक्त उसको सुनाए बिना लोक सम्मेलन नहीं कर सकता हूं। बाबू भाई के यहां पंचकल्याण था फतेहपुर में, और मैं वहां गया हुआ था, मेरा रोजाना शाम को व्याख्यान होता था, गुरुदेव भी मौजूद थे, साहू अशोक कुमार जी भी आए थे, तो वो मेरे पीछे चेंट गए, उन्हें किसी ने कह दिया होगा ये अच्छे, तो कहे मेरे साथ तुम चलो, हमारे यहां मेरे साथ चलो, छोड़ छाड़ के तुम जो कहोगे सो दोगे, जो कहोगे सो दोगे। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपना काम बढ़िया बहुत कर रहा हूं। फिर बोले एक काम करो साहब कि भगवान महावीर का 2500वां निर्माण वर्ष है, इसमें हमको 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, ये करना है वो करना है, तो आप इसमें हमें कोई योगदान दो। मतलब हम क्या हम पंडित कह देंगे, नहीं नहीं आप समाज से करवा के जगह जगह जाके करवा दो। मैंने कहा सेठ जी सुनो, तुम 1 सेकंड में अपनी जेब में से पेन निकालो और एक चेकबुक पे साइन करो और 1 करोड़ का चेक लिख दो, तो तुम 1 सेकंड में वो काम कर सकते हो, और मैं पंडित सारी जिंदगी भीख मांगने को निकलूं तो भी मेरे से ये होने वाला नहीं है, ये 10-20 पंडित मिल मिला के कर पाएंगे। तो ये 20 पंडितों की जिंदगी तुम्हारी एक क्षण पे निछावर कर दें क्या हम? लेकिन जो काम हम करते हैं वे तुम 100 सेठ मिलके नहीं कर सकते हो, पर हमसे वो काम कराना चाहते हो तुम, तो कहा मैंने उनको ये काम तुम्हारा है, हम जो शास्त्र लिखते हैं पढ़ते हैं बोलते हैं वो तुम इस भव में नहीं करने कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी किस काम की? इस समाज के किसी काम की नहीं है, क्योंकि तुम एक लाइन लिख नहीं सकते हो, एक लाइन बोल नहीं सकते हो। अभी 2-5 लाख रुपया में देकर बोली लोगे और अभय कुमार तुमको 2 लाइन पकड़ाएगा तो 2 घंटा रटोगे और फिर भी भूल जाओगे, फिर अभय कुमार को बोलना पड़ेगा। तुम्हारा मनुष्य कितना कीमती है समझ लो, कितनी अकल है तुम में, घबराना नहीं। और हम 24 घंटा उसमें लग रहे हैं, हमारी जिंदगी तुम उसमें बर्बाद करना चाहते हो। सच बोलता हूं, हाथ जोड़ने लग गए, पैर पकड़ लिए मेरे, नहीं पंडित जी आप बिल्कुल मत करना कभी जिंदगी में, ये हम ही करेंगे, आप तो अपने ही काम करिए। मैं सच बोलता हूं आपको, ये परम सत्य है। अरे आप समझते क्या हो, हम लोगों ने क्या उपलब्ध किया है पूज्य गुरुदेव के प्रताप से? उत्तम चंद जी आपको क्या मिला है आपको पता नहीं है, ख्याल में है ना? दर्जी को हीरा मिले और सुई पौना नाम, तुम्हें कोहिनूर हीरा मिल गया है और तुम अभी पेटीकोट ब्लाउज सीने में लग रहे हो। ये चंदा चिट्ठे में लग रहे हो, ये गाने बजाने में लग रहे हो, ये नाचने गाने में लग रहे हो, तुम्हें पास क्या निधि है तुम्हें उसकी कल्पना नहीं है। सच कहता हूं मेरी आंख में तो आंसू आते हैं, तुम्हें कितनी अद्भुत चीज मिली है, एक एक चीज को जिसको मिली है, और उसको 24 घंटा एक ही काम करना चाहिए कि उससे अपना कल्याण करे और जगत को सीधी वो चीज कितनी ट्रांसफर कर सकता है उतनी ट्रांसफर करे, इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात करता हूं।